समय सार लेक्चर नंबर 692 ओ नमः सिद्धे आचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के हम 320 नंबर की गाथा और उसके प्रवचन रत्नाकर नामक पुस्तक के 87 नंबर के पेज पर हम आए हैं पृष्ठ 87।
देखो 87 पृष्ठ के साथ साथ हम उसके आगे वाला जो गुजराती है उसको भी गुजराती और ये दोनों एक साथ पढ़ रहे थे यानी संस्कृत में 87 पृष्ठ पर और गुजराती है वो 89 नीचे आए थे 90 पर जाएंगे अभी। देखो पढ़ते हैं अभी वहाँ शुरू से पढ़ते
पेज नंबर
पहले में पहले उन्होंने समुदाय पातनी का यानी कौन से गाथा है गई है कौन से आने वाली है उसकी बात यहाँ जोड़ रूप जो उसका विवेचन होता है उसको बता दिया। जैसे आचार्य के कथन के अनुसार यहाँ मोक्ष अधिकार समाप्त होता है क्योंकि अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति में तो सर्व विशुद्ध अधिकार चालू हो गया था पहले से ही तो अधिकार कहाँ किसको क्या नाम दिया उसमें फर्क है विषय में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ देखते किंच विशेष औपशमिकादि पंच भावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवति इति विचार्यते। औपशमिकादि जो पांच भाव है औपशमिक शायिक शाउपशमिक औदयिक और पारिणामिक इन पांच भावों में से कौन से भाव से मोक्ष होता है इस संबंधी अभी विचार करेंगे। गुजराती में लिखा है औपशमिकादि पांच भावों में कया भाव थी मोक्ष थाय छे ते विचारवामां आवे छे। आगे तत्र औपशमिक क्षाउपशमिक क्षायिक औदयिक भाव चतुष्टयम् पर्याय रूपम् भवति शुद्ध पारिणामिकस्तु द्रव्य रूपेति। यानी वहां पर औपशमिक क्षाउपशमिक क्षायिक और औदयिक ये जो चार भाव है वे पर्याय रूप भाव है और जो शुद्ध पारिणामिक है वह द्रव्य रूप भाव है। तच्च परस्पर सापेक्षम द्रव्य पर्यायात द्वयात्मा द्रव्य पर्याय द्वयात्मा पदार्थो भन्यते। यानी द्रव्य पर्याय दो रूप ऐसा आत्मा नाम का पदार्थ यहाँ बताएंगे कैसे वे परस्पर सापेक्ष है। देखो गुजराती पढ़ना है त्या औपशमिक शाउपशमिक शायिक अने औदयिक ये चार भावो पर्याय रूप छे અને શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ દ્રવ્ય રૂપ છે એ પરસ્પર સાપેક્ષ એવું દ્રવ્ય પર્યાય દ્વય અને દ્રવ્યને પર્યાયનું જોડકું તે આત્મા પદાર્થ છે। તત્ર તાવત જીવત્વ ભવ્યત્વ અભવ્યત્વ ત્રિવિધ પરિણામિક ભાવ મધ્યે શુદ્ધ જીવત્વ શક્તિલક્ષણમ યત પારિણામિકત્વમ તત शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रितत्वात् निरावरणम रह गया, निरावरणम
रावणम हुआ है, वो रावरणम करो। नए पैराग्राफ में दूसरा शब्द,
हाँ, दूसरे पैराग्राफ के दूसरे लाइन में राइट से दूसरा शब्द है, निरावरणम। शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञम ज्ञातव्यम तत्व बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहितम। क्या कहना चाहते, फिर पढ़ते इसको। तत्र तावत यानी वहां पर जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये जो तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में से शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण, जिसका शुद्ध जीवत्व शक्ति रूप जो इसका लक्षण है, ऐसा जो पारिणामिकत्व है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव नाम का है ऐसा समझना चाहिए, और वह बंध मोक्ष पर्याय के परिणति से रहित है। क्यों, परिणति की बात नहीं है ना, परिणति वाला भाव नहीं लिया यहाँ, परिणति वाले भाव वो चार में चले जाएंगे, और पारिणामिक भाव में ये परिणति वाले पर्याय रूप से भाव वो उसमें नहीं लेते हैं। गुजराती पढ़ना देखो, 90 पृष्ठ पर। त्यां प्रथम तो जीवत्व भव्यत्व ने अभव्यत्व एम त्रण प्रकारना पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व एवं जे शक्ति लक्षण पारिणामिकपणु यानी वो स्वभाव है, शक्ति है, ते शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होवाथी निरावरण अने शुद्ध पारिणामिक भाव एवी संज्ञावाळू जाणवू। द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेद इसकी चर्चा अभी यहाँ अपनी नहीं हुई है, परंतु ये समझना ये जो पारिणामिक भाव है वो किसका विषय है, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का वो विषय है। ते तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित छे। अब आगे पढ़ते हैं, यत पुनः दश प्राण रूपम जीवत्वम भव्य अभव्यत्व द्वयम तत् पर्यायार्थिक नयाश्रितत्वात् अशुद्ध पारिणामिक भाव संयमिति। अभी अशुद्ध पारिणामिक भाव यहाँ पर किसको कहा, ये दस प्राण रूप जो जीवत्व है, पहले कौन सा जीवत्व लिया, वो जो परम पारिणामिक भाव जिसको हम लगते हैं शक्ति लक्षण जो है जीव का, शुद्ध जीव का ऐसा जो शुद्ध जीवत्व शक्ति रूप जो लक्षण है, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है वो शुद्ध निश्चय नयाश्रित, शुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध पारिणामिक भाव है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से उसको हाँ शुद्ध पारिणामिक भाव लिखा है, और वो बंध मोक्ष पर्याय से रहित है। अब यहाँ किस किस की बात चल रही है, जो अशुद्ध पारिणामिक किसको कहेंगे, हाँ दस प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व भी और अभव्यत्व भी, ये तीन लेना, तीनों की अशुद्ध कहेंगे वहां पर, तो यहाँ अशुद्ध पारिणामिक भाव कहेंगे इसको। क्या कहते हैं, यत पुनः दश प्राण रूपम जीवत्वम भव्य अभव्यत्व द्वयम यानी भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो तत् पर्यायार्थिक नयाश्रितत्वात्। पहले कैसा था,
शुद्ध
द्रव्यार्थिक नयाश्रित होता है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित था पारिणामिक भाव, जिसको शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं, और ये जो दश प्राण रूप जीवत्व है या भव्यत्व है या अभव्यत्व है, ये पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से, ये भव्यत्व अभव्यत्व पर्याय में नहीं है, पर्याय नयाश्रित यानी वो भेद रूप कथन वहां होता है ना उसमें, और वो जो भव्यत्व है और फिर जब सिद्ध होने के बाद वो भव्यत्व रहेगा भी नहीं, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी तो हमेशा जैसे जीवत्व त्रिकाल है ऐसे ये नहीं है। व्यवहार रूप जीवत्व भी जिसको दस प्राण रूप कहते हैं, तो सिद्ध भगवान में कितने प्राण है दस में से, हाँ बोलो भाई, सिद्ध भगवान को दस प्राणों में से कितने प्राण है, हाँ एक भी नहीं है, हाँ हाँ भाव प्राण है, चैतन्य भाव प्राण वो तो सभी जीवों को है, परंतु ये दस प्राण जो कहे जाते हैं वो व्यवहार से कहे जाते हैं, जड़ प्राण है, संयोग की अपेक्षा से बताए जाते हैं। तो कहते हैं इसीलिए इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा है, क्योंकि ये पर्यायतिक नहीं के आश्रित है। अब इसी का ट्रांसलेशन अनुवाद देखते हैं आगे। हाँ, प्रश्न है आपका? नहीं, द्रव्याश्रित में नहीं लिया, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायाश्रित नहीं लिया, कि वहां तो ऐसा कहा था जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीन भावों में से कौन सा जीवत्व एक बाजू लिया, शुद्ध जीवत्व, और दूसरी बाजू अशुद्ध जीवत्व, जिसको हम व्यवहार से जीव कहते हैं, दस प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों ही एक बाजू लिए और उसको अशुद्ध पारिणामिक कहा, क्योंकि वो पर्याय न्यायाश्रित, पर्यायार्थिक न्यायाश्रित है, और पहले वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित था। अब गुजराती देखते हैं इसकी बात, 90 पृष्ठ पर है ना, ये फिर पढ़ते हैं पूरा वाक्य पहले से है, तीसरी लाइन से। त्यां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व ने अभव्यत्व एम त्रण प्रकारना पारिणामिक भावो मा, ये तीन प्रकार के है ना, हाँ, उसमें से शुद्ध जीवत्व एवं जे शक्ति लक्षण पारिणामिकपणु ते शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याश्रित होवा थी निरावरण अने शुद्ध पारिणामिक भाव एवं संज्ञावाळु जाणवु ते तो बंद मोक्ष पर्याय परिणति रहित छे। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जब हम देखते हैं तो द्रव्य त्रिकाल, अभी हम मुक्त भी नहीं कहेंगे, वो बंधा ही नहीं तो मुक्त काहे को कहेंगे हम उसको, अनादि अनंत त्रिकाल जैसा एक रूप जिसका स्वभाव है, तो उसमें तो बंधकी और मोक्ष की बात ही नहीं होती है, क्योंकि बंध और मोक्ष तो पर्याय की बातें है, अवस्था की बातें है, ते तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रही छे। परंतु जे दश प्राण रूप जीवत्व, अभी ये जीवत्व जो है व्यवहार जीवत्व जो, उसको भव्यत्व अभव्यत्व के साथ लिया, अने भव्यत्व अभव्यत्व द्वय ते पर्यायार्थिक नयाश्रित होवाथी अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाला छे। पारिणामिक भाव के दो भेद किए, शुद्ध पारिणामिक भाव और अशुद्ध पारिणामिक भाव। शुद्ध पारिणामिक भाव में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण को लिया, और अशुद्ध पारिणामिक में दश प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, तीनों को रखा। अब आगे यहां संस्कृत में देखते हैं, कथम शुद्धम इति चेत, नहीं कथम अशुद्धम इति चेत, अशुद्ध क्यों कहा उसको, सुबह चेत शब्द आया था ना, तो कहते अशुद्ध केम, तो उसका उत्तर कहेंगे संसारिणाम शुद्ध नयन सिद्धानाम तु सर्वथा एव दश प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व द्वया अभावात इति। क्या कहते हैं, संसारियों ने शुद्ध नहीं थी, अने सिद्धों ने तो सर्वथा, अभी मैंने पूछा था ना सिद्धों के दस प्राण में से कितने प्राण हैं, एक भी नहीं है, संसारी को कितने हैं, हाँ हम साधारण बात करेंगे, शुद्ध ने बाद में लगाएंगे, दस है, किसको दस है, संगी पंचेंद्रियों को दस है, अभी अपना यहाँ अभ्यास नहीं हुआ, जो अभी देवलाली में देखेंगे किस जीव को कितने प्राण होते हैं, तो संगी पंचेंद्रियों के भी पर्याप्त अपर्याप्तों के अलग हो गए, असंगी के अलग हो गए, एकेंद्रियों तक उसके हम अलग अलग गिनाएंगे। तो ये जो संसारी जीव के कहे जाते हैं वो व्यवहार से कहे जाते हैं, जैसे सिद्ध भी अपने भाव प्राण से है निश्चय से, वैसे सभी संसारी भी निश्चय से कहो, या यहाँ क्या लिखा है, शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं से, शुद्ध नहीं से देखेंगे तो संसारियों को भी कोई दस प्राण नहीं है, इसलिए कहते संसारियों को शुद्ध नहीं से और सिद्धों को किसी नए से नहीं, सर्वथा उनके तो है ही नहीं है, संसारियों को दस प्राण नहीं है वो कहा, वो किसी नए से कहा, परंतु सिद्धों को दस प्राण नहीं कहा, वो तो है ही नहीं उनके, बिल्कुल ही नहीं है, सर्वथा ही नहीं है, सर्वथा दस प्राण रूप जीवत्वनो अने भव्यत्व अभव्यत्व द्वयनो अभाव हुआ थी। क्या कहते हैं, सिद्धों को इसमें से कौन कौन से है, भव्यत्व है कि अभव्यत्व है, हाँ अभव्य तो हो ही नहीं सकता, अभव्य तो चौथे में भी चौथे की क्या बात, दूसरे के ऊपर का कोई गुणस्थान अभव्य को नहीं हो सकता। तो सिद्धों को होने का तो अभव्यत्व होने का सवाल ही नहीं। अब वो भव्यत्व है कि नहीं है, तो भव्यत्व हम चौदहवें तक ही कहेंगे। भव्य ने होने योग्य, क्या होने योग्य, सिद्ध होने योग्य। जब तक सिद्ध नहीं थे तब तक वो भव्यत्व कहेंगे हम। अब जब सिद्ध हो चुके तो भव्यत्व की अभिव्यक्ति हो गई, अभी वो भव्यत्व से भी पार हो गए,
उसका मूल नाम तो अलग है,
भव्य सिद्धिक है। भव्यत्व को भव्य सिद्धिक होने योग्य, क्या होने योग्य, सिद्धि होने योग्य। और अभव्य का पूरा नाम है अभव्य सिद्धिक। तो यहाँ जो कहते हैं कि सिद्धों में तो भव्यत्व नहीं है, अभव्यत्व नहीं है और 10 प्राण भी नहीं है, संसारी को इसमें से क्या क्या है। अभी हम कहेंगे शुद्ध नय से क्या क्या है, तो शुद्ध नय से संसारी को 10 प्राण भी नहीं है, शुद्ध नय से संसारी को भव्यत्व भी नहीं है, और शुद्ध नय से संसारी को अभव्यत्व भी नहीं है। क्योंकि पारिणामिक भले कहे परंतु वो पर्यायार्थिक नय से पारिणामिक कहे। शुद्ध नय लगाएंगे कि जैसे 10 प्राण भी संसारी को नहीं है, उसी नय से हम कहेंगे तो भव्यत्व अभव्यत्व भी उसके नहीं है। ये बात ख्याल में आई, ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ कि उसको अशुद्ध क्यों कहा, किसको, 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों को अशुद्ध पारिणामिक भाव क्यों कहा है। तो उसका उत्तर दिया है, संसारियों ने शुद्ध नहीं थी तथा सिद्धों ने तो सर्वथा, सर्वथा ज लिखा है, फिर भी 10 प्राण रूप जीवत्वनो अने भव्यत्व अभव्यत्व द्वयनो अभाव हुआ थी, यानी संसारियों को भी शुद्ध नय से अभाव है, फिर भी वो है जो कहते हैं वो अन्य नय से कहेंगे, परंतु सिद्धों में भी तो किसी भी नय से वो घटित ही नहीं होगा। अब आगे वाला पैराग्राफ संस्कृत में पढ़ेंगे, 87 पृष्ठ पुराना। तत्र त्रयस्य मध्ये भव्यत्व लक्षण पारिणामकस्तु यथा संभवम सम्यक्त्वादि जीव गुण घातकम देशघाती सर्वघाती संज्ञम मोहादि कर्म सामान्यम पर्यायार्थिक नयन प्रच्छादकम भवति इति विज्ञेयम्। क्या कहते हैं, उन तीनों में जो भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव है, हम यहाँ पढ़ेंगे गुजराती निकालना, ते त्रणमा भव्यत्व लक्षण पारिणामिक ने तो यथासंभव सम्यक्त्वादी जीव गुणोनु घातक देशघाती ने सर्वघाती एवं नामवाड़ू मोहादिक कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नये ढाके छे एम जानू। क्या कहते हैं, भव्यत्व है, मिथ्या दृष्टि जीवों में भव्यत्व है कि नहीं है, हाँ है ना, हाँ अनंत जीव तो मिथ्यात्व अवस्था में हाँ हो भी सकता है, बरोबर है। यानी मैंने पूछा था मिथ्यात्व में कोई भव्य है कि नहीं है, हाँ तो है, और अनंत भव्य तो अभी तो कितने ही नित्य निगोद में पड़े हैं। तो मिथ्यात्व में जो भव्यत्व है तो क्यों नहीं उनके सम्यक तो गुण प्रकट हुआ है। तो वहां पर भी क्या कहते हैं, यथासंभव यानी जीव में जैसी बात है वहां सम्यक्त्वादी जीव गुणोनु घातक, ऐसा कौन है, मोह कर्म। तो ये मोह कर्म है, उसमें दो बताए, एक देशघाती और एक सर्वघाती। ये तो स्पर्धक की बात होती है, यानी उसमें कितनी फल देने की शक्ति है अनुभाग की अपेक्षा, उसके देशघाती और सर्वघाती ऐसे दो प्रकार बताए हैं। मोहादि कर्म सामान्य में ये उसके ये दर्शन मोहनीय के चारित्र मोहनीय के और कुछ भेद है उसकी बात यहाँ नहीं की है, मोह कर्म इतना ही लिया है। तो कहते हैं कि सम्यक्त्वादि जीव गुणों के घात करने वाले जो मोहादि कर्म है यानी मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नए ढाके छेम जानू, कर्म उसको ढाकता है वो भी, ये तो जो कथन है वो पर्यायार्थिक नए से है, ऐसा कहते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो प्रच्छादक है ने उसका आवरण करता है। अब कहते तत्र च यदा, अब वहां पर ये भव्य जो है उसके जो सम्यक्वादी गुण आवृत थे मोहादि कर्म सामान्य की अपेक्षा, अब कहते तत्र च यदा कालादि लब्धि वशेन, कालादि लब्धि, हमने तो काल लब्धि सुना था, कालादि लब्धि क्या होती है? हाँ, काल लब्धि आदि, आदि शब्द काल को लगाए फिर भी अन्य सब समझना, कालादि लब्धि है ना, काल लब्धि आदि, अनेक कारण होते ना वहां पर, कालादि लब्धि वशेन भव्यत्व शक्ति व्यक्तिर भवति शक्त भव्यत्व शक्तर व्यक्ति भवति तदा अयम जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण पर्यायेन परिणमति। क्या कहते हैं, कालादि लब्धि के वश से ऐसा कह दिया तो यहाँ पांचों ही समवाय है, पुरुषार्थ के बिना काल लब्धि से कार्य होता ऐसा नहीं कहा, जब उसके सम्यक्त्व की योग्यता होती है तो सभी वहाँ वो मोह कर्म का उपशम भी होगा और यहाँ जीव पुरुषार्थ भी करेगा, उसकी वो पर्याय भी प्रकट होने वाली वही पर्याय होगी, उसका समय भी निश्चित होगा। तो ये सारे पांचों ही समवाय स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, तो इनके वश से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, व्यक्तता हो जाती है, यानी उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तदा अयम जीव, यानी तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण ऐसा जो निज परमात्म द्रव्य है उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण रूप जो पर्याय है उस पर्याय रूप से यह परिणत होता है। उसका अनुवाद देखते हैं, ते त्रणमा भव्यत्व लक्षण पारिणामिक ने तो यथासंभव सम्यक्वादी जीव गुणों घातक देशघाती ने सर्वघाती एवं नामवाड़ू मोहादिक कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नए ढाके छे एम जानू। क्या
अभी अपने को मालूम है क्या?
हाँ,
ये देशघाती और सर्वघाती ये कौन कौन से कर्मों में हो सकते हैं?
हाँ, प्रश्न क्या पूछा?
देशघाती और सर्वघाती, यहाँ तो मोहादिक लिखा ना भाई, तो मोह में तो होते हैं, तो नक्की हो गया, और बाकी सात कर्म जो है उनमें किनमें किनमें ये देशघाती और सर्वघाती होंगे?
अच्छा, अच्छा, आपने चार को तो निकाल दिया कि देशघाती और सर्वघाती, ये भेद घाती में ही हो सकते, अघाती में नहीं, वेदनीय में होगे कि नहीं होगे, साता वेदनीय क्या है, देशघाती के सर्वघाती है? हाँ, देशघाती है। अच्छा, आप क्या कहते प्रेरणा बहन? हाँ, अभी अरविंद भाई ने भी बताया था ना, अघा वेदनीय घाती है कि अघाती है? हाँ, तो उसमें देशघाती या सर्वघाती हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए, वो तो अघाती है, घात करता ही नहीं है वो, तो साता हो या असाता, असाता है वो घात करता है और साता देशघाती ऐसा नहीं है। तो जो घाती कर्म है कौन कौन से, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनीय और अंतराय है, तो इसको मोहादि कर्म सामान्य कहा, घाती और देशघाती संज्ञा वाला। हम गुजराती पढ़ रहे थे ना, क्या और कुछ पूछना है इसमें?
नहीं, हाँ, कालादि,
हाँ, त्यां जारे कालादि लब्धि ना वशे भव्यत्व शक्ति नी व्यक्ति थाय छे त्यारे आ जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, वो ल रह गया,
भाव के बाद क्षण आया, वो
भाव के बाद क्षण हुए ना, भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य ना सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय परिणमे छे, यहाँ तक हमने पढ़ा था, यानी इसको सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय रूप से परिणत होता है। तच्च परिणमनम आगम भाषया औपशमिक शायोपशमिक शायिक भावत्रयम बन्यते, यह जो परिणमन है कैसा, सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुचरण, इसको क्या कहते हैं, आगम भाषा में उस परिणामन को परिणाम को आगम भाषा में औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव त्रय ऐसे तीन भाव रूप उसको कहते हैं। अध्यात्म भाषा यहाँ पुनः ये जयसेन आचार्य की विशेषता है। ये आगम भाषा में क्या कहते हैं, अध्यात्म भाषा में क्या कहते हैं, ये जब आत्मानुभूति की बात होती है, शुद्धोपयोग की बात होती है, तो आगम भाषा में वो करण परिणाम कहेंगे, अध्यात्म भाषा में ऐसा कहेंगे, सविकल्प निर्विकल्प इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ भी कहते हैं कि आगम भाषा में उसको क्या कहेंगे, तीन नाम दिए, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। अध्यात्म भाषा या पुनः शुद्धात्माभिमुख परिणाम शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञाम लभते। आगम भाषा में उसके तीन भेद किए, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। और अध्यात्म भाषा में उसको शुद्धात्माभिमुख, शुद्धात्मा के अभिमुख यानी सन्मुख परिणाम या शुद्धोपयोग, अभी बात आई थी ना रहस्य पुण्य चिट्ठी में, शुद्धोपयोग भी कहेंगे उसको। आदि, आदि में बहुत सारी संज्ञाएं हैं, यदि उसके नाम पाए जाते हैं उसका अनुवाद देखते हैं। ते परिणमन आगम भाषा थी औपशमिक क्षायोपशमिक तथा क्षायिक एवं भावत्रय कहवाये छे, तीन भावों को यहाँ भावत्रय कहा। अने अध्यात्म भाषा थी शुद्धात्माभिमुख परिणाम शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पामे छे। सच पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्यात कथंचित भिन्न कस्मात भावना रूपत्वात। यह जो पर्याय है वह शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण जो शुद्धात्म द्रव्य है उस द्रव्य से कथंचित भिन्न है। क्यों ऐसा कहते हैं, तो वो भावना रूप होने के कारण। देखो यहां पीछे ते पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य थी कथंचित भिन्न है, कथंचित भिन्न छे शा माटे, तो कहते भावना रूप होवाती। अब कहते शुद्ध पारिणामिक अस्तु भावना रूपो न भवती, और ये जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो भावना रूप नहीं होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव तो भावना रूप नहीं, भावना यानी भवन होना, परिणमन होना। यानी शुद्ध पारिणामिक भाव वो पर्याय रूप से नहीं हो जाता, भावना रूप से वो परिणत होने वाली वो नहीं, वो तो है ही है, अनादि से है, त्रिकाल है। यदि एकांतेन, यद्यकांतेन लिखा ना, यदि एकांतेन शुद्ध पारिणामिकात अभिन्न भवति, एकांत से यदि हम इस पर्याय को शुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न मानेंगे तो क्या होगा, ये पर्याय रूप भाव है तो वो और द्रव्य एक में खो जाए सर्वथा, तो पर्याय के नाश होने पर उसका भी नाश हो जाएगा। क्या ले? क्या कहना चाहते हैं, न्याय की बात। तो यदि एकांतेन शुद्ध पारिणामी भाव पारिणामिकात अभिन्न भवती, यानी यदि वो एकांत से अभिन्न हो जाए, तदा अस्य भावना रूपस्य मोक्ष कारणभूतस्य मोक्ष प्रस्तावे विना से जाते सती। क्या कहते हैं, ये जो भावना रूप जो है वो मोक्ष कारणभूत है, जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। जब मोक्ष प्राप्त होगा तो मोक्ष मार्ग का क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मोक्ष का उत्पाद हुआ, तो मोक्ष मार्ग का क्या हुआ, व्यय हो गया, नाश हो गया। यदि हम उसको सर्वथा अभिन्न मानेंगे, क्योंकि मोक्ष के कारणभूत है पर्याय, यदि हम उसको सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो इसका नाश होने पर, यहां लिखा ना ये जो भावना रूप जो लिखे है ये कैसा है, मोक्ष कारणभूतस्य, ये मोक्ष के कारणभूत ऐसी जो ये भावना है, मोक्ष प्रस्तावे विनाशे जाते सती, मोक्ष का उत्पाद होने पर ये जो भावना रूप पर्याय है उसका विनाश होने के कारण, विनाशे जाते सती यानी विनाश होते हुए शुद्ध पारिणामिक भावस्य अपि विनाशः प्राप्नोपि, शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश होने का प्रसंग आएगा। नच तथा, परंतु ऐसा नहीं होता। देखिए आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो जो ते पर्याय एकांते शुद्ध पारिणामिक की अभिन्न होए तो मोक्षनो प्रसंग बनता आ भावना रूप मोक्ष कारणभूत नो विनाश तथा, पर्याय नो लिखा ना, ये पर्याय रूप भाव है और उसका विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिक भाव पण विनाश ने पामे, पण एम तो बनतु नथी कारण के शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी छे। तथास्थितम, तथास्थितम मैंने एक मिनट
माटे आम ठरियो, तथास्थितम यानी इस तरह से ये नक्की हो गया, सिद्ध हुआ शुद्ध पारिणामिक भाव विषय या भावना तद्रूपम यत औपशमिक आदि भावत्रयम तत् समस्त रागादि रहित्वेन शुद्धोपादान कारणत्वात् मोक्ष कारणम भवति नच शुद्ध पारिणामिकः। पढ़ो,
देखो मैं पढ़ती हूँ जरा, मैंने पढ़ा नहीं ना। तथास्थितम, उससे ये बात सिद्ध होती है, क्या होती है, शुद्ध पारिणामिक भाव विषय या भावना तद्रूपम यद औपशमिकादि भावत्रयम तत् समस्त रागादि रहितत्वेन शुद्ध उपादान कारणत्वात् मोक्ष कारणम भवति न च शुद्ध पारिणामिकः। अब यहाँ पर गुजराती में देखते हम, माटे आम ठर्यू, हमने कहा था ना इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक यानी शुद्ध पारिणामिक भाव ने अवलंबनारी जे भावना ते रूप जे औपशमिकादि त्रण भावो, कौन कौन से देखे, औपशमिक शावशमिक और क्षायिक, ये जो तीन भाव है ते वो समस्त रागादि थी रहित होवाने लीधे शुद्ध उपादान कारणभूत होवा थी मोक्ष कारण ने मोक्षना कारण छे, परंतु शुद्ध पारिणामिक नहीं, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्षनु कारण नथी। शुद्ध पारिणामिक भाव का आश्रय करने वाली ये जो पर्याय है वह मोक्ष का कारण है, शुद्ध पारिणामिक भाव को मोक्ष का कारण नहीं गिना, वो तो बंध मोक्ष पर्याय से रहित ऐसा भाव है, परंतु उसके आश्रय से उसमें एकाग्र होने से पर्याय स्वयं मोक्ष मार्ग रूप होती है और फिर मोक्ष मार्ग का विनाश होकर मोक्ष पर्याय उत्पन्न होती है। यस्तु शक्ति रूपो मोक्ष स शुद्ध पारिणामिक पूर्वमेव तिष्ठति, अयम तु व्यक्ति रूप मोक्ष विचारो वर्तते। यहाँ जो मोक्ष की बात चल रही है वो पर्याय वाले मोक्ष की बात चल रही है, ये शक्ति रूप मोक्ष तो हमेशा ही विद्यमान है। देखो आगे, जे शक्ति रूप मोक्ष छे ते तो शुद्ध पारिणामिक छे, कि जिसका लक्ष्य करने से जिसमें एकाग्र होने से व्यक्ति रूप मोक्ष पर्याय प्रकट होगी, व्यक्ति रूप ने पर्याय में प्रकट होना और शक्ति में ने त्रिकाल जो स्वभाव है उसमें होना, तो शक्ति रूप से तो सब में है, निगोध में भी है, अभव्य में होगा कि नहीं होगा, हाँ, उसके कभी व्यक्त होने वाली वो उसकी ऐसी उसमें वो है ही नहीं योग्यता। तो कहते जे शक्ति रूप मोक्ष छे ते तो शुद्ध पारिणामिक छे, प्रथम थी ज विद्यमान छे, ये जो शक्ति है वो कहीं बाहर से नहीं आती है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय स्वयं उस रूप हो जाती है। आ तो व्यक्ति रूप मोक्षों विचार चाले छे। तथा च उक्त सिद्धांते, ऐसे ही सिद्धांत में कहा है, ग्रंथों में भी यही बात बताई है कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, क्या कहा है, पारिणामिक जो भाव है शुद्ध पारिणामिक है वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय ने क्रिया से रहित है, हमने देखा ना वो तो पर्याय से रहित है, ऐसा कहते पीछे लिखा है। एवीज रीते सिद्धांत मां कहू छे के निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय छे। अब निष्क्रिय का क्या अर्थ होता है वो स्वयं बता रहे यहाँ पर आचार्य, निष्क्रिय इति को अर्थ है, यानी निष्क्रिय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समाधान करते उसका, बंद कारण भूता या क्रिया रागादि परिणति तद्रूपो न भवति, मोक्ष कारण भूता च क्रिया शुद्ध भावना परिणति तद्रूप च न भवति। परिणति किसको लिखा है, किस किस के साथ परिणति लगाया शब्द? रागादि के साथ भी लगाया है और शुद्ध भावना के साथ भी लगाया। अभी परिणति संबंधी चर्चा चली ना अपनी रहस्य पूर्ण चिट्ठी में, शुद्ध परिणति कहते हो तो अशुद्धता कहाँ से आई, वो रागादि परिणति भी है साथ में उसके, एट अ टाइम एक परिणति में दोनों बातें चलती है चारित्र गुण में। हाँ, तो कहते बंद के कारणभूत जो क्रिया है कौन सी, रागादि परिणति रूप, उस रूप भी नहीं होता, किसकी बात चल रही है,
शुद्ध
पारिणामिक भाव की, और क्या नहीं होता है। तो मोक्ष के कारणभूत ऐसी वो कौन सी क्रिया है, तो शुद्ध भावना परिणति, शुद्ध भावना ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो शुद्ध भावना है उस रूप परिणति वैसे भी नहीं होती, यानी उस रूप दोनों ही परिणति रूप नहीं, ना राग रूप है ना मोक्ष के कारणभूत ऐसी, ये भावना रूप है। ततो ज्ञायते, इससे ये जाना जाता है, शुद्ध पारिणामिक भावो ध्येय रूपो भवति ध्यान रूपो न भवति। क्या कहना चाहते हैं, जिसका ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहते हैं, और जो पर्याय ध्यान करती है उसको हम ध्यान कहेंगे। नहीं समझा, ध्यान पर्याय है कि नहीं है, किसका ध्यान करती है? अभी हमारी भाषा मोक्ष के लिए जो ध्यान कहा है, किसका ध्यान किया जाता है, भगवान का, त्रिकाली, तो जिसका ध्यान करते उसको ध्येय कहते हैं। तो ये शुद्ध पारिणामिक भाव है, वो ध्यान है क्या ध्येय है? हा? शुद्ध पारिणामिक भाव किसमें एकाग्र होना है, किसका ध्यान करना है, किसका लक्ष्य करना है, वो तो ध्येय है। और ध्यान क्या है, ये जो भावना हो गई पर्याय, ध्येय नष्ट होगा कि ध्यान नष्ट होगा? क्योंकि ध्यान का फल मिलेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ध्यान रूप पर्याय नहीं रहेगी, तो ध्येय भी नष्ट हो जाएगा उसके साथ। मैं पूछ रही हूँ, होगा कि नहीं होगा? देखो देखो, हाँ हाँ, देखो क्या कहते हैं, ततो ज्ञायते, शुद्ध पारिणामिक भावो ध्येय रूपो भवति ध्यान रूपो न भवति। शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। कस्मात्, क्यों? ध्यानस्य विनश्वरत्वात्, विनश्वरत्वात्, ध्यान है वो विनश्वर है। ध्यान यानी क्या, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अभी श्रेणी में है मुनिराज, क्या कर रहे हैं हम, क्या कहेंगे, वो ध्यान चल रहा है। तो ध्यान ने उपयोग अन्यत्र से हटाकर एक में लगाना, उसको हम ध्यान करेंगे। तो केवल ज्ञान होने पर क्या होगा, ध्यान चलता रहेगा कि नहीं? ऐसा उपयोग कहीं से हटाकर अपने में लगाएंगे ना, कहाँ है उनका उपयोग, अपने में, पर में नहीं है। केवल ज्ञान किसको कहना, उपयोग कहाँ पर है उनका, पढ़ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की समस्त पर्याय एक समय में युगपद उपयोग रूप ज्ञान में जान रहे। स्वपर का उपयोग क्रम से नहीं है, वो एक साथ एक समय में है और तीनों काल का। तो अभी कहां से हटाना, हटाने की कोई अभी वहां चांस नहीं है, उनके कोई वहां इसे हटा नहीं सकते। हम तो कोई गंदगी देख दे तो नजर हटाकर दूसरी ओर देख सकते हैं। तो केवल ज्ञानी बिचारे हो गए ना। त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय एक साथ जानने में आ रही है, तो कहीं हटाना और कहीं लगाना, ये बात उनके, ये नहीं, उनके ध्यान नहीं है, ध्यान का फल प्राप्त हो गया। आप कहेंगे हमने तो सुना है शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा पाया तो अरिहंतों को होता है, कौन कौन से उसके नाम क्या है, एकत्व अरिहंतों को, तीसरा और चौथा, हाँ आपने पहला दूसरा बताया, हाँ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये तीसरा, ये जो बताए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति वो तेरहवें गुणस्थान के अंत की ओर होता है। सूक्ष्म क्रिया सभी वो योग है वगैरह वो उसको सूक्ष्म किया जाता है, और वो विपरीत क्रिया अनिवृत्ति होती है वैसे वो तो चौदहवें में हो जाती है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ध्यान जो है वो विनश्वर है, जो जिस ध्यान के कारण केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो ध्यान का क्या हुआ, वो नष्ट हो गया, नष्ट हुआ ने क्या, वो ध्यान का फल मिला, केवल ज्ञान को ध्यान का फल कहा है, जो अचीव करना था वो प्राप्त हुआ पर्याय में, अभी वो नो मोर ध्यान जिसको कहेंगे। तो वहां ध्यान क्यों कहा है, केवल ज्ञानी को ध्यान तो कहने में आता है, तो ध्यान का हमेशा फल क्या मिलता है, तो उससे निर्जरा होती है। तो केवल ज्ञानी की भी असंख्यात गुणा निर्जरा चल रही है, उस निर्जरा की अपेक्षा उपचार से वहां भी ध्यान कहने में आता है, परंतु सचमुच में केवल ज्ञानी को ध्यान नहीं है, उसका ध्यान का जो कार्य निर्जरा वाला है वो वहां देखने में आता है, इसलिए उनके भी ध्यान कह दिया जाता है। सच देखो तो केवल ज्ञान ये ध्यान का फल है।
शोभा चंद जी को नहीं समझा,
हाँ आप जरा समझाए ना,
हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। बराबर,
हाँ बहुत अच्छा। तथा योगिंद्र देव ही अपि उक्तम, योगिंद्र देव ने भी ऐसा कहा, ये योगिंद्र देव नाम सुना है कहीं पर क्या, हाँ योगसार, एक ही योगसार ही मालूम है। लक्ष्मी जी बोलो, यहाँ तो लेना भी चाहते थे सिखाने के लिए, हाँ? नहीं नहीं, परमात्मा प्रकाश और एक ग्रंथ है जो बहुत जनों ने नहीं सुना है, अमृताशीति नाम का एक ग्रंथ है, अशीति ने 80 गाथा है उसमें, अमृतमयी ऐसी, उस ग्रंथ का नाम है अमृताशीति। तथा योगिंद्र देव ही अपि उक्तम, योगिंद्र देव ने भी ऐसा बताया है, नवि उपचैन विमरई बंधन मुख करे जीव परमेत्ते जोया जिनवरे उबणे, यानी जो उत्पन्न भी नहीं होता, जो मरता भी नहीं है, ना बंध करता है ना मोक्ष करता है, जीव परमत्थे जो या जिनवर एवं भय, ऐसे परमार्थ रूप से जो जीव है उसको इस तरह से यथार्थ में जीव कैसा है, जो नहीं उत्पन्न होता है, नहीं मरता है, ना मोक्ष करता है, ना बंध को करता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया है। आचार्य भी ऐसा नहीं कहते मैं कहता हूँ मान लो, तो जिनेंद्र भगवान की दुहाई कि उन्होंने ये बात बताई है, इसका अर्थ देख के फिर आगे बढ़ेंगे। ये जयसेन आचार्य की टीका स्वामी जी को बहुत प्रिय थी, और 320 गाथा के प्रवचन तो कितनी जगह उन्होंने लिए थे, इतनी गाथा के ऐसे पैम्पलेट बना के पूरे सभा में बांटते थे, हजारों लोगों का समुदाय सुनता था इसको, यहाँ भी बम्बई में भी लिए थे उन्होंने, क्रॉस मैदान पर लिए थे ना,
मेट्रो के बाजू,
हाँ देखो यहाँ लिखते, एवीज रीते सिद्धांत मां कहूं छे के मिला 90 पेज पर नीचे इसे तीसरी लाइन, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिका, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय छे, निष्क्रिय नो शो अर्थ छे, शुद्ध पारिणामिक भाव बंधना कारणभूत जे क्रिया, दो प्रकार की क्रिया बताई, एक बंध के कारणभूत क्रिया और एक मोक्ष के कारणभूत क्रिया, तो बंधना कारणभूत जे क्रिया एटले रागादि परिणति ते रूप नथी, अने मोक्षना कारणभूत जे क्रिया शुद्ध भावना परिणति ते रूप पण नथी, बंध मोक्ष रूप तो है ही नहीं है, उसके कारण रूप भी नहीं है। पहले बताया ना, ये बंध के पर्याय रूप नहीं है, क्योंकि ये भाव पर्याय रूप नहीं है, मोक्ष रूप भी नहीं है और बंध रूप भी नहीं है, तो वो तो समझे, परंतु उसके कारण रूप क्रिया तो उसकी होगी कि नहीं, तो कहते हैं बंध के कारणभूत क्रिया से भी रहित है, और मोक्ष के कारणभूत क्रिया से भी रहित है। माटे एम जानवामां आवे छे के शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप छे, ध्यान रूप नथी। शा माटे? कारण के ध्यान विनश्वर छे अने शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी छे, अनादि अनंत कायम रहने वाला त्रिकाली भाव है ने, एक रूप परिणाम। श्री योगिंद्र देवे पण कहूं छे, अभी हमने पढ़ा था ना, नवी उपजई नवी मरई बंधु न मुख करे, जीव परमे थी जोया जिनवरे उभणे। अर्थात हे योगी, परमार्थे जीव उपजतो पण नथी, मरतो पण नथी अने बंध मोक्ष करतो नथी, एम श्री जिनवर कहे छे। अब इसी बात को और समझाएंगे संस्कृत में आना फिर। नीचे से दूसरा पैराग्राफ। किंच विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित अयम भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण क्षायोपशमिकन्यत्वेन यद्यपि एक देश व्यक्ति रूपा भवति, तथापि ध्याता पुरुषः यदेव सकल निरावरणम् अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वरम् शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षणम् निज परमात्म द्रव्यम् तदेव अहम् इति भावयति न च खंड ज्ञान रूपमिति भावार्थः। ये पहले आपने याद भी करवाया था ना यहाँ पर, हाँ, ये पूरा वाक्य ये एक साथ सब बोल देते थे। स्वामी जी का बहुत प्रिय वाक्य है। क्या कहते हैं देखो, यहाँ अर्थ में देखते वरी ते स्पष्ट करवामां आवे छे। विवक्षित एटले एक देश शुद्ध नयाश्रिता भावना, क्या कहते हैं ये जो भावना है, कौन सी मोक्ष मार्ग रूप जो पर्याय है उसको यहाँ भावना कहा। ये जिसको कहते हैं ना शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय नय, या कहते परम शुद्ध नय जो कहते हैं, तो वो तो त्रिकाली की बात हो गई। अब शुद्ध नय कहेंगे तो क्या कहोगा, ये शुद्ध नयाश्रित, क्या एक देश शुद्ध नयाश्रित, परम शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, एक देश शुद्ध होगा और अशुद्ध होगा। परम शुद्ध है ने वो त्रिकाली, शुद्ध किसको कहेंगे, केवल ज्ञान पूर्ण रूप पर्याय। एक देश शुद्ध ने यानी ये मोक्ष मार्ग की पर्याय, और अशुद्ध ये राग आदि। तो यहाँ एक देश शुद्ध नयाश्रित कहा। एक देश शुद्ध नयाश्रित आ भावना अर्थात कहवा धारेली आंशिक शुद्धि रूप आ परिणति, पूर्ण शुद्धि हो जाए तो मोक्ष कहलाएगी। निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण क्षायोपशमिक ज्ञान रूप होवा थी, जो के एक देश व्यक्ति रूप छे, तो पण ध्याता पुरुष एम भावे छे के, ये क्या कहा इसको, ये जो निर्विकार विकार रहित राग रहित और कैसा है, स्वसंवेदन लक्षण। स्वसंवेदन किस गुण की पर्याय है, ज्ञान के चारित्र्य पक्का का, हाँ ज्ञान गुण की अनुभव है ना, स्वानुभूति कहो स्वसंवेदन कहो, ज्ञान गुण की पर्याय है। और ये कौन सा ज्ञान है अभी यहाँ, स्वानुभूति करने वाला कौन सा ज्ञान चल रहा है यहाँ पर, क्षायोपशमिक ज्ञान। इसलिए क्या कहा, निर्विकार ने राग रहित स्वसंवेदन लक्षण क्षायोपशमिक ज्ञान रूप हुआ थी, जो के एक देश व्यक्ति रूप छे तो पण। एक देश क्यों है, क्या क्षायिक ज्ञान हो जाएगा तो सर्वदेश कहेंगे, अब ये एक देश व्यक्ति रूप है। फिर भी ध्याता पुरुष एम भावे छे के, अब ध्याता पुरुष कैसे ध्यान करता है, कैसे ध्यान अपने को किस रूप वो ध्याता है, तो मैं कौन हूं ऐसा उसका चल रहा है। तो देखो जे सकल निरावरण, अभी आवरण है क्षायोपशमिक ज्ञान है, परंतु अपने को किस रूप ध्या रहा है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय यानी प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव में आ रहा है ऐसा अविनश्वर, अनादि अनंत अविनश्वर है, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, निज परमात्म द्रव्य, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, निज परमात्म द्रव्य, तेज हूं छू, मैं कौन हूं, ऐसा ध्याता चल रहा है उसका, ये पूरा है। परंतु एम भाव तो नहीं कि खंड ज्ञान रूप हूं छू, वो भले अभी क्षायोपशमिक ज्ञान रूप है, फिर भी वो भावना कैसी उसकी चल रही है, वो ध्याता कैसा है, तो हूं तो सकल निरावरण, इस तरह से उसकी वहां चल रही है बात। यानी मैं खंड ज्ञान रूप नहीं हूं, ये पर्याय में इतनी वहां उसकी सामर्थ्य चल रही है उसकी,
क्षयोपशम ज्ञान में, इस
क्षयोपशम ज्ञान में ही
अपने बारे में सोचते हैं, ध्याते हैं, यानी ध्यान में ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं किसी आवरण से सहित नहीं हूँ, सकल निरावरण हूँ, मेरे में कोई खंड खंडपना है नहीं, मैं अखंड हूँ, मैं एक हूँ, यानी मेरे में अनेक रूपता नहीं है, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव जो होता है वह तो एक ही होता है, और प्रत्यक्ष प्रतिभास में, यानी मैं जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो सके, अनुभव हो सके, ऐसा मैं हूँ, मैं अविनश्वर, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव स्वभावी ऐसा अविनश्वर हूँ, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, यानी ये जो परम भाव जो है मेरा लक्षण क्या है, तो ये शुद्ध पारिणामिक, जिसको हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं ना, तो परम भाव लक्षण ऐसा जो कौन शुद्ध पारिणामिक, ऐसा निज परमात्म द्रव्यते हूँ, यानी ये पर नहीं, मेरा ये सारा कोई जो है ये मेरा स्वरूप है, इस तरह यहाँ कहते हैं कि जो क्षयक्षम ज्ञानी है वह अपने बारे में इस तरह से सोचता है, यानी तेज हूँ छू बस, परंतु एम भाव तो न थी के खंड ज्ञान रूप हूँ छू, आम भावार्थ छे। अब आगे
इदम तो व्याख्यानम परस्पर र रह गया यहाँ पर संस्कृत में, परस्पर सापेक्ष आगम अध्यात्म नय द्वया अभिप्रायस्य अनिरोधेन एव कथितम सिद्ध्यति इति ज्ञातव्यम। किसने विवेकी भी क्या कहते हैं विवेकियों ने ऐसा जानना चाहिए क्या, तो कहते यह जो व्याख्यान है वह परस्पर सापेक्ष से आगम और अध्यात्म नय द्वय, अध्यात्म नय और आगम नय ऐसे दो नयों के अभिप्राय के अनिरोधे नय, यानी एक दूसरे के सापेक्ष है, एक दूसरे का निरोध या निराकरण नहीं कर रहे हैं, इस कारण वो सिद्ध ही है, यानी निर्वाधित है, ऐसे जानना चाहिए विवेकियों को, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ इसका देखते आ व्याख्यान परस्पर सापेक्ष एवा आगम अध्यात्मना तेमज नयद्वयना। अच्छा, नयद्वयन यानी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, मैंने आगम और अध्यात्म पर नय लगाए, वो ऐसा नहीं है, आगम और अध्यात्म के अभिप्राय से बताए, आगम भाषा में ऐसा कहते, आगम अध्यात्म भाषा में ऐसा कहते, वो भी बताए उन्होंने, और दोनों नए भी लगाए, कौन से, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, कि नए द्वैना यानी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयना अभिप्राय ना अविरोध पूर्वक कहवा हुआ थी, वहां कहा ना अनिरोधे न एव, यानी अविरोध पने कहवा हुआ थी, सिद्ध चेटले निर्बाध छे एम विवेकियो ए जानूं। यहां अभी अनुवाद पूरा होता है, अब इस पर स्वामी जी के प्रवचन होंगे
19 तारीख,
ये तो चलेंगे बहुत आगे, 320 गाथा तो अरे बहुत बहुत बड़ी है, चलती रहेगी।
जावाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो। वाशिंग